अध्याय छ, जीवन दृष्टि और धार्मिक मान्यताएं। कोई भी कवि या लेखक अपने वातावरण से अलग होकर नहीं जीता। वातावरण कवि के जीवन की, उसके व्यक्तित्व को परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही रूपों में कई प्रकार से प्रभावित करता रहता है। यह सत्य है कि कवि केवल वातावरण की उत्पत्ति नहीं है, वरन वह सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरण का निर्माता भी है। किंतु निर्माण की यह शक्ति या उसे बदलने की यह क्षमता भी कवि को उसी से प्राप्त होती है। देश काल की सांस्कृतिक स्थिति किसी कवि के काव्य को प्रभावित करने में समर्थ होती है। श्री हिप्पोलाइटेन ने लिखा है कि काल और देश कवि के निर्माण में निर्णायक तत्व माने जाते हैं। टेन के विचारों को ही आगे चलकर समाजशास्त्रीय आलोचकों ने बहुत विकसित किया। फ्रांसीसी आलोचक वातावरण के इस पूरे प्रभाव को व्यक्त करने के लिए मिलियू शब्द का प्रयोग करते हैं। वातावरण के सम्यक अध्ययन के अभाव में हम कभी कभी किसी कवि के काव्य के अंतः साक्ष्यों के आधार पर या कभी कभी केवल अनुमान के बल पर उसकी जीवन दृष्टि तथा धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में नाना प्रकार के विवाद उपस्थित कर देते हैं। कवि विद्यापति के विषय में भी इसी प्रकार के विवाद चलते हैं। विद्यापति भक्त थे या श्रृंगारिक, शैव थे या शाक्त, रहस्यवादी थे या मातृलौकिक आदि आदि। इन सभी प्रश्नों का उत्तर विद्यापति के समय की सांस्कृतिक और धार्मिक अवस्थाओं के अध्ययन तथा कवि की जीवन दृष्टि के विश्लेषण के आधार पर ही दिया जा सकता है। विद्यापति को बहुत से आलोचक रहस्यवादी कवि मानते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने विद्यापति के काव्य के अंतःस्रोता का विचार करके यह निश्चित किया कि इनोटेड कामा राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक हैं। राजा जीवात्मा के मिलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। यह प्रयत्न तब तक अप्रतिहत रूप से चलता रहता है जब तक जीवात्मा परमात्मा में लय होकर संयुज्य लाभ नहीं कर लेता। जीवात्मा अपने सांसारिक प्रपंचों और माया के पक्षों में से इस प्रकार आबद्ध है कि वह अपनी आंतरिक प्रेरणा से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। इसलिए इसे ईश्वरोन्मुख करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्यापति के काव्य में दूती गुरु का प्रतीक है। वह दूती जीवात्मा या प्रेमिका को निरंतर परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, इस अभिसार या प्रेम मिलन के प्रत्येक कार्य में वह उसकी सहायता भी करती है। श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने, जिन्होंने विद्यापति के पदों को एकत्र करके संग्रहित किया, अपने भाषण में विद्यापति को रहस्यवादी बताया। श्री जनार्दन मिश्र ने विद्यापति को रहस्यवादी बताया है। उन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड कामा विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोरों पर था। इसके प्रभाव से बचकर निकलना और किसी अधिक निष्कंटक मार्ग का अनुसरण करना उन्हें शायद अभिष्ट न था, अथवा अभिष्ट होने पर भी तुलसीदास की तरह अपने वातावरण के विरुद्ध जाने की शक्ति उनमें न थी। इसलिए स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा की उपासना की ओर धारा उमड़ रही थी, उससे उन्होंने अपने को बहा दिया। श्री जनार्दन मिश्र ने अपने मत की पुष्टि के लिए जिस पद को उद्धृत किया है उसे भी देख लेना चाहिए। वह पद नीचे दिया जाता है। एक दिन छली नवनीत रे, जल मिन जेहन पीरित रे, एक ही वचन बीच भेल रे, हसीप हूँ उतरु न देल रे, एक ही पलंग पर कान रे, मोर लेख दूर देश भान रे। इस पद में जीवात्मा के अहंकार तथा बाद में उसके ग्लानि का चित्रण है। पलंग शरीर है, जहाँ आत्मा के रूप में परमात्मा निरंतर हृदय में निवास करता है, किंतु अज्ञान के पड़े जीव के लिए वह जाने कितनी दूर है। श्री कुमार स्वामी भी विद्यापति के पदों में रहस्यवादी भावों का प्रभाव देखते हैं। सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति में श्री कुमार स्वामी ने लिखा कि विद्यापति का काव्य गुलाब है, गुलाब चारों तरफ से केवल गुलाब। यह आनंदनी कुंज है, यहाँ हमें उस सर का दर्शन होता है। वृंदावन की कृष्ण लीला शाश्वत है। वृंदावन मनुष्य का हृदय देश है। यमुना का किनारा इस संसार का प्रतीक है, जो राधा और कृष्ण अर्थात जीव और ईश्वर की लीला भूमि है। वंशी की आवाज अदृश्य सत्ता की आवाज है, जीव को परमात्मा की ओर अग्रसर होने का आह्वान है। कुमार स्वामी के मतों का जोरदार विरोध करते हुए श्री विनय कुमार सरकार ने अपने पुस्तक लव इन हिंदू लिटरेचर में लिखा है कि कुमार स्वामी जैसे विद्वान दार्शनिक कवि आलोचक की सबसे बड़ी कमजोरी जो उन्हें इस प्रकार की द्विधापूर्ण और असंबद्ध बातें कहने के लिए प्रेरित करती है वह है यह है कि वे कभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि वस्तुतः विद्यापति के काव्य की प्रेरणा में श्रृंगार और काम वासना है। केवल श्रृंगार और काम वासना, श्रृंगार की भावना कभी दूषित नहीं होती और न तो विद्यापति को इसके लिए किसी के सामने सफाई देने की जरूरत है। श्रृंगार स्वतः महान है, वह अपनी महत्ता के लिए किसी का मुखापेक्षी नहीं है। आगे चलकर विनय कुमार सरकार ने लिखा कि वस्तुतः कुमार स्वामी जिन्होंने अपनी धारणा बना रखी है कि विद्यापति के श्रृंगारिक वर्णन भारतीय पारिवारिक जीवन की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और इसे तोपने के लिए ही वे विद्यापति के मांसल ऐन्द्रिक प्रेम वर्णनों को आध्यात्मिक बनाने का असफल प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः वे विद्यापति की ओर से उनकी प्रेम भावना के लिए जो मनुष्य के मन को ऊपर उठाती है ऐन्द्रिकता समझ कर सफाई देने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु वे लाख प्रयत्न करके भी राधा कृष्ण के प्रेम वर्णन के प्रत्येक प्रसंग की जीव की ब्रह्मोन्मुखी साधना प्रमाणित नहीं कर सकते। वह चाहे भी तो पार्थिव तत्वों, गंदगी, धूल, अपूर्णता, अतृप्ति, स्त्री के हृदय, मनुष्य के प्रेम, ऐन्द्रिक सुख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विनय कुमार सरकार के मत से ऐन्द्रिक भावना का मानवीय संबंधों के बीच इतना सुंदर सम्मिश्रण और इतने ऊंचे स्तर का चित्रण भारतीय साहित्य में विद्यापति के अलावा और किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार हमने देखा कि ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, कुमार स्वामी जैसे विद्वान विद्यापति के राधा कृष्ण प्रेम वर्णन को रहस्यवादी बताते हैं, जबकि विनय कुमार सरकार और बहुत से दूसरे लोग इसे नितान श्रृंगारिक 100% श्रृंगारिक कहते हैं। जनार्दन मिश्र ने विद्यापति के रहस्यवादी होने का एक कारण यह भी बताया है कि उस समय रहस्यवादी धारा की प्रधानता थी। विद्यापति इससे बच न सके और उसमें बह गए। रहस्यवादी धारा में से उनका तात्पर्य क्या है यह तो स्पष्ट नहीं हो सका, किंतु तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला उनके संकेत को अवश्य समझ सकता है। रहस्यवादी साहित्य जो विद्यापति के समय में था उनके पूर्व लिखा जा रहा था वह या तो सिद्ध साहित्य था या परवर्ती सूफी साहित्य। रहस्यवादी प्रवृत्ति अपने शुद्ध रूप में सिद्ध साहित्य में नहीं दिखाई पड़ती, फिर भी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत रहस्यवादी प्रकृति का एक रूप है अवश्य। सिद्धों का रहस्यवाद आधुनिक रहस्यवाद से थोड़ा भिन्न है, भिन्न इस अर्थ में कि आधुनिक रहस्यवाद न तो दार्शनिक शब्दों या सांप्रदायिक नियमों से आक्रांत है और न तो इसमें पुराने मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्धों की तरह गुह्य साधना का घटा टोप है। फिर भी पुराने सिद्धों के रहस्यवादी भावना पर विचार करने पर इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है विद्यापति पर इनका प्रभाव कम से कम दिखाई पड़ता है। डॉक्टर सुभद्र झा क्रिएशन आदि के मत का विरोध करते हुए लिखा है कि यूनाइटेड कामा भारतीय प्रतीकवादी कवियों की कविताओं में जैसे जायसी या कबीर के काव्य में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्नशील दिखाया जाता है। परमात्मा एक स्वतः परिपूर्ण सत्ता होने के कारण निरपेक्ष है और वह न तो जीवात्मा से मिलने के लिए इच्छुक होता है और न तो कोई आह्वान करता है। कबीर या रत्नसेन या जायसी को पद्मावती जो ब्रह्म के प्रतीक हैं बहुरिया या रत्नसेन के लिए आकांक्षा व्यक्त नहीं करते। मैं विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं मानता, पर क्रिएशन आदि की स्थापना के विरोध में उपर्युक्त मत बहुत प्रबल नहीं प्रतीत होता। अगर प्रतीक की दृष्टि से कथा के व्यापक प्रसंगों का ब्यौरेवार अर्थ बिठलाया जाने लगे तो कबीर का साई जाने कितनी बार कबीर पर रंग डालता है। सतगुरु हो महाराज साई मुंह पर रंग डारा। यही नहीं, राजा राम भरतार कबीर के घर आते हैं और वे सखियों से मंगल गान गाने की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार जायसी को पद्मावती रत्नसेन के कैद हो जाने पर उसे छुड़ाने के लिए न केवल प्रयत्न करती है बल्कि उसके मृत्यु से के बाद चिता में जलकर अपने शरीर को छार भी कर देती है। इसलिए राधा और कृष्ण के उभय पक्षी सक्रिय प्रेम को डॉक्टर झा के तर्क के आधार पर और रहस्यवादी सिद्ध करना कठिन है। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण संतों के प्रेम के विषय में ठीक यही लिखा है कि यूनाइटेड कामा भक्त का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। भगवान या ईश्वर कोई शक्ति या सत्ता मात्र नहीं है, बल्कि एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति है जो कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता है। यूनाइटेड कामा। इसलिए विद्यापति के कृष्ण यदि राधा के रूप से आकृष्ट हैं या उससे प्रेम करते हैं या प्रेम का प्रतिपादन देते हैं तो इसके सर्वशक्तिमान ईश्वर रूप में कोई त्रुटि नहीं आती। विद्यापति पर रहस्यवाद का प्रभाव, खास तौर पर सिद्ध सूफी रहस्यवाद का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि सिद्ध और सूफी दोनों ही जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं विद्यापति में नहीं पाए जाते। विद्यापति में न तो सिद्धों की सहज समाधि है, न षटचक्र, न कुंडलिनी, हठ योग, न तो मन के भीतर की साधना द्वारा आत्मलय होने की प्रक्रिया। विद्यापति न माया की बात करते हैं, न ब्रह्म की और न किसी सदगुरु के शरण में जाने का उपदेश देते हैं। उन्हें शब्द की चोट नहीं लगती है और न तो अनाहत नाद का आकर्षण खींचता है। वे किसी खंड नाद को जो जगत के अंतस्थल में निरंतर गूंजता रहता है सुनने के लिए कभी दौड़े नहीं, न उसकी चर्चा की, न तो क्रिया विशेषण से सुषुम्ना के पद को उन्होंने उन्मुक्त किया और न तो कुंडलिनी को जगाकर अशुभ्रह्म रंध्र में पहुंचाने का प्रयत्न ही किया, न तो वे उपाधि रहित शब्द के प्रणय तत्व की बात करते हैं और न वे अखंड सत्ता रूप ब्रह्म के वाचक स्फोट की चर्चा करते हैं। उसी प्रकार उनके यहाँ महाशु का वर्णन नहीं है, न माया का तरवर है और न पंचविडाल। विद्यापति पर सूफी रहस्यवाद के प्रभाव की बात उठाना भी व्यर्थ है। सूफी धर्म का प्रचार शुरू हो गया था, इसमें कोई शक नहीं, पर मिथिला की तरफ 14वीं शताब्दी में इसके प्रचार के संकेत प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। होते भी हों तो विद्यापति के काव्य में इनका प्रभाव ढूंढना अनुचित है। सूफी रहस्यवाद का प्रभाव यदि विद्यापति पर होता तो शक्ति, विष्णु, माधव, राधा, शिव आदि बहुदेवों को स्तुति वे नहीं गाते, क्योंकि सूफी धर्म मूलतः कैशोरवादी है। सूफी मत बहुत बातों में भारतीय द्वैत मत से मिलता जुलता है। यह सत्य है कि सूफी साहित्य में भी प्रेम साधना पर ही जोर दिया गया है। कुछ एक विद्वान इसलिए कभी कभी रागानुगा कृष्ण भक्ति की सूफी रहस्यवादी काव्य के प्रेम पीर वाली प्रवृत्ति का प्रभाव भी मानने लगते हैं, किंतु विद्यापति के राधा कृष्ण प्रेम में सूफी प्रेम पद्धति से लेश मात्र भी साम्य नहीं है। विद्यापति जैसे ब्राह्मण के संस्कारी चित्त में इस विदेशी पद्धति का प्रभाव पड़ना कठिन था भी। यदि राधा कृष्ण प्रेम में सूफी मत का प्रभाव ढूंढा जा सकता है तो जयदेव के गीत गोविंद में तथा अन्य संस्कृत प्रेम काव्यों में भी इसके प्रभाव का अनुमान मिठलाया जा सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम 100% भारतीय है। यह प्रेम रहस्यवादी नहीं है, क्योंकि इसमें न तो गुह्य उपासना है और न प्रतीकवाद ही। राधा जीव का प्रतीक हो सकती है, किंतु कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। इसलिए रत्नसेन और पद्मावती वाली प्रतीक पद्धति भी यहाँ बैठती नजर नहीं आती। विद्यापति के राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग में रहस्यवादिता के गंध खोजने वाले लोगों की खिल्ली उड़ाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यूनाइटेड कामा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएँ वर्णित हैं उस रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उस रूप में वे गोलोक में नित्य मानी जाती हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ल जी ने लीलाओं को नित्य माना और यह भी स्वीकार किया कि इनका कीर्तन कृष्ण भक्ति के प्रसंगों में चलता है, पर विद्यापति के पदों में वे भक्ति के तत्व का समावेश स्वीकार नहीं करना चाहते। सूर आदि भक्तों के श्रृंगारी पद लीला कीर्तन होने के कारण भक्ति के अंतर्गत परिगणित हो सकते हैं, तो विद्यापति के श्रृंगारी पद क्यों नहीं? इसका उत्तर देते हुए शुक्ल जी ने कहा कि नोटेड कामा, विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। नोटेड कामा, विद्यापति शैव थे इसलिए कृष्ण भक्ति के पद नहीं लिख सकते और इसीलिए उनके पदों को श्रृंगार के पद मानना चाहिए, कृष्ण भक्ति की नहीं। यह बहुत अच्छा तर्क प्रतीत नहीं होता। श्री शिवनंदन ठाकुर और अन्य कई आलोचकों ने यह माना है कि विद्यापति शैव थे। श्री शिवनंदन ठाकुर ने विद्यापति को शैव प्रमाणित करने के लिए कई तर्क दिए हैं। अंत में तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों का सारांश देते हुए उन्होंने लिखा है कि नोटेड कामा, विद्यापति के समय मिथिला में तांत्रिक उपासना की प्रबलता थी। विद्यापति के ऊपर इसका प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। संभव है जब तक विद्यापति अपने उपासना का रूप स्थिर नहीं कर पाए थे तब तक वे शक्ति के उपासक थे और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी शक्ति की उपासना करवाते थे। उस समय भारत में विशिष्टाद्वैत मत का स्पष्ट प्रचार हो रहा था। उनके अनुसार विष्णु लक्ष्मी राधा कृष्ण आदि युगल मूर्ति की उपासना की धारा बह चली थी। विद्यापति ने जब अपनी उपासना का रूप स्थिर किया और शिव जी को अपना इष्ट देव बनाया तब शाक्त विशिष्टाद्वैत मतों से प्रभावित होने के कारण शिव जी को अपना इष्ट देव नहीं रखकर युगल मूर्ति गौरी शंकर को अपना इष्ट देव बनाया। विद्यापति ने कहा, लोढ़व कुसुम तोड़व बेलपात पूजव सदाशिव गौरी के साथ। इसमें शक नहीं कि विद्यापति ने शिव गौरी पर कई स्तुति परक पद लिखे हैं। प्रसंगवश यहाँ उनके एतत् संबंधी कुछ पदों पर विचार कर लेना चाहिए। इसमें से कुछ पद केवल शंकर की स्तुति के हैं, कुछ अर्धनारीश्वर रूप में शंकर उमा दोनों के, कुछ पद उमा शंकर विवाह के प्रसंग के हैं। ऐसे पदों में लेखक ने शंकर में ईश्वरत्व बुद्धि के साथ ही साथ जन सामान्य की वैवाहिक रीति पद्धति का भी समावेश किया। ऐसे पदों में तत्कालिक मिथिला के विवाहों में होने वाले हास विनोद आदि के भी सांकेतिक चित्र सामने आते हैं। विवाह के अवसर पर शंकर पार्वती के विवाह गीत आज भी पूर्वी प्रदेशों में गाए जाते हैं। ऐसे समय पर वर पक्ष की क्रूरता और दरिद्रता का झूठा बयान करके एक खास प्रकार का विनोद पैदा करने की परिपाटी चलती है। इस परिपाटी में शंकर पार्वती के विवाह गीत बहुत फिट बैठते हैं। विरोध में कन्या के सौभाग्य का वर्णन भी रहता है, इसलिए इस प्रकार के मांगलिक गीत बहुत प्रचलित रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्यापति का एक छोटा गीत देखिए। हम नहीं आज रहब यदि आंगन जो बूढ़ होइत जमाई घे माई, एक त बैर भेल सीधा विधाता दोसर धिया कर बाप, तेसर बैर भेल नारद बाभन जे बूढ़ आनल जमाई घे माई, पहलुंक बाजन डामरु तोरब दोसरी तोरब उंड माल, बरद हाँ के बरियात भिलाई विधिया ले जाई पराई गिमाई, धोती लोटा पतरा पोथी एहू सब ले बही छिनाई, जो किछु बजता नारद बाभन डाढ़ी धैव घिसियाई गेमाई, भन विद्यापति सुन हे मनाइन बो दृढ़ कर अपन ज्ञान, शुभ शुभ गए श्री गौरी बियाहो गौरी हर एक समान गेमाई। कन्या के विषय में माँ की चिंता, ईश्वर का फटेहाल दूल्हा बनकर आना, नारद ऋषि की दुर्व्यवस्था और व्यंग विनोद के अंतराल में पार्वती के अशेष मंगल और सौभाग्य की सदीक्षा कितने सुंदर ढंग से व्यक्त हुई है पंडित शिवनंदन ठाकुर के कथन में कोई तथ्य नहीं मालूम होता। यहाँ एक बात उन्होंने अलबत्ता अनजाने में स्वीकार कर ली है जो विद्यापति के काव्य की धार्मिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए जरूरी है, वह यह कि उस समय मिथिला में विशिष्टाद्वैत मत का प्राबल्य था। डॉक्टर सुभद्र झा ने लिखा है कि नोटेड कामा, गौरी शंकर के विवाह गीत मिथिला में विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। शिवनंदन ठाकुर विद्यापति को शैव मानते हैं इसलिए उनके द्वारा वर्णित राधा कृष्ण प्रेम को सामान्य श्रृंगार काव्य की कोटि में ही रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि मिथिला में ईश्वर की पूजा पति के रूप में कभी कभी नहीं होती थी। नोटेड कामा, डॉक्टर सुभद्र झा ने ठाकुर के इस मत को गलत बताया है और उन्होंने विष्णुपुरी की कविताओं का उल्लेख देकर बताया है कि नोटेड कामा, मिथिला में प्रेम भक्ति की कविताएं लिखी गई थी। खैर। हम यहाँ सुरेंद्र ठाकुर या आचार्य शुक्ल के उस तर्क पर विचार करना चाहते हैं कि क्या विद्यापति जी की शर्त थे, इसलिए वे राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का काव्य नहीं लिख सकते थे। शैव और वैष्णव धर्म का वैमनस्य जैसे उग्र बाद में हुआ, विद्यापति के समय में नहीं था। ईस्वी सन 1000 के आसपास उत्कीर्ण खजुराहो के शिलालेख से भगवान शिव को एकेश्वर कहा गया है तथा विष्णु बुद्ध जिन आदि को भी उन्हीं का अवतार बताया गया है। वायु पुराण में ही शिव और विष्णु के तादात्म का विवरण मिलता है। प्रकाशम चा प्रकाशम च जंगमम स्थावरम च यत विश्वरूपमिदं सर्वम रुद्र नारायणात्मकम। विष्णु पुराण में विष्णु और शिव को एक बताया गया है। शंकरो भगवान शौर्यमूर्ति गौरी द्विजोत्तमम नमो नमो विशेषतम ब्रह्मात्महिम पिनाक दीर्घ। आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है कि जो लोग विद्यापति के बारे में कहा करते हैं कि शैव थे तब वैष्णव भक्त नहीं हो सकते, वे उस काल का मनोस्थिति को नहीं जानते। शिव सिद्धिदाता थे, विष्णु भक्ति के आश्रय। गाढ़वाल नरेश अपने को माहेश्वर कहते थे, पर वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति भी किया करते थे। विद्यापति ने एक स्तुति पद में विष्णु और शिव की समवेत स्तुति की है। भल हरि तुअ कला खन पीत बसन खन ही बग छला खन पंचानन खन भुजचारी खन शंकर खन देव मुरारी खन गोकुल भय चराये गाय खन भीख मांग डमरु बजाये खन गोविंद भय लिय महादान खन ही भसम भरी आँख उकान एक शरीर लेल दुईबास खन बैकुंठ खन ही कैलाश भन ही विद्यापति विपरीत भान ओ नारायण ओ सुलपान। इस पद में न केवल विद्यापति ने शंकर विष्णु को एक बताया, बल्कि विष्णु लीलाओं में मुख्य गोकुल में गाय चराना और गोविंद के रूप में दधि का महादान देने वाला बताया है। हरि और शंकर के इसी समूहित रूप को बाद में तुलसीदास ने अपनाया और उसे विस्तृत भूमिका प्रदान की। रुचिर शंकर हरि नाम मंत्रावली द्वंद दुख हानि आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा वदति तुलसीदास विशद वाणी। शिव और विष्णु की वंदना के साथ साथ विद्यापति ने शक्ति या दुर्गा की भी स्तुति में पद लिखे हैं। इसलिए कोई शक्ति या मौलिक बात कहने का इच्छुक आलोचक कहना चाहे तो यह भी कह सकता है कि चूंकि विद्यापति शाक्त थे, इसलिए उन्होंने राधा के रूप में आद्याशक्ति की लीलाओं का चित्रण किया है। वस्तुत स्थिति को न समझने के कारण इस प्रकार के तर्कों के आधार पर किसी कवि के दृष्टिकोण तथा धार्मिक विश्वासों का विवेचन नहीं किया जा सकता। विद्यापति के समय में मिथिला में क्या संपूर्ण उत्तर भारत में शैव शाक्त और वैष्णव तीनों प्रकार के मतों का काफ़ी प्रचार हो गया था। कामरूप और हिमालय के तराई के हिस्सों में शाक्त साधना का काफ़ी प्रचार था। इसका प्रभाव विद्यापति पर कितना पड़ा यह कहना कठिन है, किंतु शक्ति का रूप सदा से भारतीय कवि को अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है। शक्ति के भी विविध रूप हैं। राधा स्वयं परमेश्वर की आलादनी शक्ति कही गई है। पुराणों में अनेक स्थलों पर प्रकृति को विष्णु माया कहा गया है। शक्ति की व्यापकता और सार्वभौमकता क्षुण है। राधा तत्व कई दृष्टियों से कश्मीरी शैव दर्शन में व्याख्याता शक्ति तत्व से समानता रखता है। पुराणों में वर्णित वैष्णव शक्ति तत्व और शैवागमों में वर्णित शक्ति तत्व के रूप में अंतर नहीं, नाम का अंतर ही ज्यादा है। विद्यापति ने शक्ति के इस सार्वभौम रूप की वंदना की है। विदिता देवी विदिता हो अविरल केश सुहंती एक नेक साहस को धारिणि जाने रंगा पुरनंती कज्जल रूप तुए काली कहिए उज्जवल रूप तुअ वाणी रवि मंडल पर चंडा कहिए गंगा कहिए पानी ब्रह्मा घर ब्राह्मणी कहिए हर घर कहिए गौरी नारायण घर कमला कहिए के जान उत्पत्ति तोरी विद्यापति कविवर एहु गाउल जाचक जन के गति हासिनी देवपति गरुण नारायण देव है नरपति। इस प्रकार विद्यापति की शक्ति वंदना में मध्यकालीन तांत्रिक साधना का प्रभाव ढूंढा जाए तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु साधारण तौर से हम इसे एक हिंदू कवि के चित्त का दुर्गा के प्रति भक्ति निवेदन ही कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। इन सभी देवताओं की वंदना को दृष्टि में रखकर हरप्रसाद शास्त्री ने कहा कि विद्यापति वस्तुतः पंचदेव उपासक थे। कीर्तिलता के वंगीय संस्करण में शास्त्री जी ने उक्त मत प्रस्तुत किया, किंतु विद्यापति को पंचदेव उपासक माने या शुद्ध चित्त का एक हिंदू, यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि उनकी रचनाओं को श्रृंगारिक माना या वैष्णव भक्तिपूर्ण। इस प्रश्न का उत्तर विद्यापति के काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा उसके व्यक्तिगत जीवन की स्थितियों, वातावरण आदि को समझे बिना नहीं दिया जा सकता। जिस धार्मिक वातावरण की चर्चा की गई है, विद्यापति के काल में उपयुक्त सभी धर्म कमोबेश मात्रा में प्रचलित थे। विद्यापति ने प्रत्येक देवी देवता की वंदना की, यहाँ तक कि उन्होंने राधा की वंदना में भी पद लिखे, जैसे देखी देखी राधा रूप अपार अपरूप के ही विधि आन मिलाओली खित्ति तल लाभ निसार अंग ही अंग अनंग मुरझायत हृदय पड़े अधीर मनमत कोटि मथन करुजे जन से हरि भरि मदगीर कतकत लक्ष्मी चरण तल नवोछय रंगिन हेरि विभोरी करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहो निसिकोर अगोरी। इस पद में राधा जगदात्री की पीठिका पर आसीन है, उनके रूप के सामने संपूर्ण जगत का सौंदर्य फीका है। कामदेव को भी अपने रूप से विजित करने वाले कृष्ण इस सौंदर्य को देखकर संज्ञाहीन हो जाते हैं। सहस्त्रों लक्ष्मी राधा के चरणों में न्योछावर हैं। राधा का यह देवी सुक्त वाला रूप है, इसके सामने देव देवता सब कुछ तुच्छ और निर्बल है। कहने वाले कह सकते हैं कि बिहारी सत्सई के लेखक ने भी ग्रंथारंभ में राधा की वंदना की है, किंतु उनका काव्य कभी भक्ति काव्य नहीं माना गया, फिर विद्यापति का ही क्यों माना जाए? इसके उत्तर में एक चलता तर्क यह दिया जा सकता है कि बिहारी की रचना किसी भी परवर्ती वैष्णव भक्त द्वारा कीर्तन का विषय नहीं मानी गई, जबकि विद्यापति की रचनाएं एक व्यापक क्षेत्र में कीर्तन में गाई जाती थी। महाप्रभु चैतन्य देव विद्यापति की रचनाओं पर गा करके मस्त हो जाया करते थे। विद्यापति के परवर्ती ब्रजबोली कवि गोविंद दास ने लिखा है कि विद्यापति का काव्य कितना गौरवपूर्ण है। गोविंद गौरी के प्रेम पर लिखे हुए उनके गीतों ने संसार का हृदय जीत लिया। गौरी वैष्णव का तो यहाँ तक कहना है कि विद्यापति का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वे चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले इस पृथ्वी पर आकर राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति के गान लिखे, जिन्हें महाप्रभु कीर्तन में गाएंगे। कृष्णदास ने लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के गीतों को बड़े प्रेम से सुनते थे। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद दुहे श्लोक गीते प्रभुर कराय आनंद। वस्तुतः विद्यापति श्रृंगारी कवि थे या भक्त, इसे समझने के लिए भक्तिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझना अनिवार्य हो जाता है। हमारे मन में श्रृंगार भक्ति के विषय में कई मिथ्या धारणाएं बुद्धमूल हो गई हैं। श्रृंगार भक्ति का विरोधी नहीं है। विद्यापति के काव्य में श्रृंगार का स्वरूप क्यों है, इसे हम पूरी पृष्ठभूमि में रखकर देखने पर ही समझ सकते हैं। नक्षिक वर्णन केवल श्रृंगारी कवियों ने प्रस्तुत नहीं किए, रूप वर्णन की वैष्णव शैली में किन किन तत्वों का समावेश हुआ यह भी जानना आवश्यक है। रूपासक्ति और रूपोपासना के कार्य में फर्क है। राधा क्या है, राधा का स्वरूप का विकास किन किन तत्वों में सम्मिश्रण से हुआ, राधा के किस रूप की विद्यापति स्तुति करते हैं आदि प्रश्न इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आकलन के बाद ही समाहित हो सकते हैं।